परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम पुराने नियम में पाई जाने वाली पुस्तक रूत का अध्ययन कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको इस पुस्तक के अध्ययन से अवश्य आत्मिक लाभ मिल रहा होगा। प्रभु की आशीषों को यूं ही प्राप्त करते रहिए और सुनते रहिए हमारा ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के मधुर और प्रिय नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज भी प्रतिदिन की तरह परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं उन नए श्रोता मित्रों का भी इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम इन दिनों रूत की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि रूत ने एक सही निर्णय लिया और परमेश्वर के मार्ग को चुन लिया। यद्यपि यह निर्णय उसके लिए आसान नहीं था, उसे एक चुनौतीपूर्ण निर्णय लेना था और उसने परमेश्वर के मार्ग को चुन लिया, अर्थात नवमी के साथ रहने को चली गई। और जब वह उस देश में गई जहां उसके लोग पराये लोग थे, फिर भी उसने सबको अपना लिया। और यहां पर हम देखते हैं कि वह एक खेत में गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि आप रूत से पूछते कि क्या वह जानती थी कि वह सही खेत में जा रही है, तो वह कहती, मुझे नहीं मालूम आप क्या कह रहे हैं। यदि आप उससे पूछते कि उसने उसी खेत को क्यों चुना, तो मेरे विचार में वह आपसे कहती, सुबह घर छोड़ने से पहले मैंने इसके लिए प्रार्थना की थी। मैंने परमेश्वर से कहा था कि वह मेरा मार्गदर्शन करे। मुझे सच में पता ही नहीं था कि कौन सा रास्ता मैं लूं, परंतु जब यहाँ पहुंची और एक खेत देखा जिसमें अच्छा अन्न उपजा था, परंतु उसमें अधिक लोग सीला बिनने नहीं घुसे थे, अतः मुझे विश्वास हो गया था कि इस खेत का स्वामी बहुत कंजूस है। परंतु मार्ग की दूसरी ओर तो खेत में बहुत लोग थे। मैं समझ गए थे वह एक दयालु मनुष्य है और मुझे ऐसा ही खेत चाहिए था, क्योंकि मैं परदेशी हूँ, मुआबी हूँ और जाति बाहर हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि वे मुझे बाहर कर दें। इस कारण मैंने यह खेत चुना। जहाँ तक मैं सोचता हूँ मेरे मित्रों, कि जब वह कुछ दूर गई और झिझक कर रुकी, तब स्वर्ग दूतों ने जो उसे देख रहे थे सांस रोक ली और कहा, काश वह सही खेत में जाए। और मेरे विचार में जब स्वर्ग ने देखा कि वह बोआज के खेत में प्रवेश कर गई, तब सब ने राहत की सांस ली होगी। परमेश्वर सबका नियंत्रण करता है। रूत के लिए तो अनिश्चित थी, परंतु दूसरी ओर परमेश्वर का प्रबंध था। मेरे मित्रों, आज के संसार में रहते हुए एक महिमामय बात यह जानना है कि हमारा समय उसके हाथ में है। यह जानना कि वह इस संपूर्ण जगत की घटनाओं को आदेश देता है और यह भी जानना कि परमेश्वर ने कहा है कि उसकी अनुमति के बिना उसकी संतान के साथ कुछ नहीं हो सकता। आपको स्मरण रखना है कि अय्यूब के चारों ओर एक बाड़ा था और परमेश्वर की अनुमति के बिना शैतान भी उसे छू नहीं पाया था। और परमेश्वर तब तक अनुमति नहीं देता है जब तक कि उसका कोई महान और सिद्ध उद्देश्य पूरा ना हो। अय्यूब के जीवन में उसका एक महान उद्देश्य पूरा हुआ था। मुझे पूरा विश्वास है कि रूत ने निर्णय लेते समय उसका महत्व नहीं समझा था। उसने बस निर्णय लिया और मेरे विचार में उसने प्रार्थना की और तर्क के आधार पर निर्णय लिया। मेरे मित्रों, आज परमेश्वर की संतान जो इसलिए निराश है कि उसे चिन्ह, अनुभव, ज्योति, वाणी, दर्शन, स्वप्न नहीं प्राप्त हो रहे हैं। उसे यह समझना है कि आज परमेश्वर इन माध्यमों को काम में नहीं ले रहा है। आज वह अपने वचन के माध्यम से हमसे बातें करता है और परमेश्वर की संतान जो उसकी संगति में रहती है और जिसके जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं जिसे उसने अंगीकार न किया हो और उसने पवित्र आत्मा को दुखी न किया हो, वह अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर सकता है। और जब उसे अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही हो, तो वह निर्णय लेकर आगे बढ़ सकता है। अब संभव है कि उसका निर्णय गलत हो, तो परमेश्वर किसी उद्देश्य के निमित्त इसकी अनुमति देता है। मैं अपने जीवन में देखता हूँ कि एक घटना ऐसी है जिसमें मैं चाहता था कि परमेश्वर मेरे लिए द्वार खोले, परंतु परमेश्वर ने वह द्वार नहीं खोला। सच तो यह है कि उसने वह द्वार बंद कर दिया मेरे मुंह पर। मुझे बहुत बुरा लगा, परंतु मैं परमेश्वर का आभारी हूँ कि उसने वह द्वार बंद किया, क्योंकि अब जब मैं पीछे देखता हूँ तो समझ में आता है कि वही सबसे अच्छा था। मेरे मित्रों, जैसे यूसुफ ने पिता की मृत्यु के बाद अपने भाइयों से कहा था उत्पत्ति की पुस्तक 50:20 में, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बच जाएं। कैसी अद्भुत बात है, और आज यह आपके लिए प्रोत्साहन का कारण हो। संभवतः आप अधीर हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपको स्पष्ट निर्देशन क्यों नहीं प्राप्त होता है। ऐसे विश्वासी भी हैं जिनके भ्रम में उन्हें स्वर्ग से सीधा संपर्क प्राप्त है। यह तो बहुत अच्छी बात है कि हमें स्वर्ग परमेश्वर के निकट आने का हियाव है, परंतु मुझे विश्वास नहीं कि वह हमसे सीधी बात करता है। अतः हम अति सावधान रहें। अब हम कहते हैं, मैं जानता हूं कि यह परमेश्वर की इच्छा है। हम हर बार विश्वास से ऐसा नहीं कह सकते हैं, परंतु हम अपना जीवन उसे समर्पित कर सकते हैं। हमारे जीवन में ऐसा पाप न हो जिसका हमने अंगीकार नहीं किया और पवित्र आत्मा को दुख नहीं पहुंचाया, और परमेश्वर की इच्छा में रहे जैसा हम समझते हैं वैसे नहीं। हाँ मेरे मित्रों, आप उसे अद्भुत रीति से समर्पण कर सकते हैं। यदि आप यूसुफ और अय्यूब की नाई कठिन परिस्थितियों में फंस जाएं, तो अय्यूब के साथ कहें, वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। मेरे मित्रों, यह एक महिमामय सत्य है जो जीवन में आनंद और आशा भर देता है। परमेश्वर की व्यवस्था परमेश्वर की संतान के लिए हर एक दिन को आनंदमय बनाता है। मैं प्रसन्न हूं कि उसने मुझे नक्शा नहीं दिया, क्योंकि मैं नए नए मार्गों में चलना चाहता हूं, उन स्थानों में जहां मैं पहले कभी नहीं गया। मैंने एक बार ऐसा ही किया। ओह, वह मार्ग कैसा घुमावदार था, और प्रत्येक घुमाव हर्ष प्रदान करता है। वह बसंत का समय था और चारों ओर रंग बिरंगे पौधे थे और प्राकृतिक सुंदरता थी, पहाड़ थे, रंग भरे हुए थे। मैं अति प्रसन्न हूं कि परमेश्वर ने मुझे पहले ही वहां के चित्र नहीं भेजे। जीवन हमारे लिए कैसा रोमांचकारी हो सकता है। मेरे मित्रों, आइए हम पढ़ें रूत की पुस्तक 2:4। लिखा हुआ है, और बोआज बेतलहम से आकर लौने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे, और वे उससे बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। मेरे मित्रों, किसी कारणवश बोआज सुआ अपने खेत में पहुंच नहीं पाया। वह एक समृद्ध मनुष्य था, अतः वहां जल्दी पहुंचने की आवश्यकता भी शायद नहीं थी, परंतु मुझे उसकी मानवता देख ऐसा प्रतीत होता है कि वह एक बड़ा मनुष्य था, और संभवतः उस दिन सुबह उसे बेतलहम में कोई काम था, और हो सकता है कि वह बैंक गया हो अपने कर्मियों के लिए पैसा निकालने के लिए। कारण जो भी हो, वह अपने खेत में विलंब से पहुंचता है। अब देखिए, उसने वहां पहुंचते ही पहला काम क्या किया। उसने अपने कर्मियों से कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे, यह मुख्य शब्द थे, और वे उससे बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। यह हमारे आज के युग के श्रमिक अगुओं और पैसे वालों का सा स्वभाव नहीं है। आज दुर्भाग्य से ये दो व्यवहार साथ नहीं चलते हैं। स्पष्ट कहूं तो मैं एक गरीब प्रचारक हूं, मैं पूंजीपति नहीं हूं। मेरा पिता एक साधारण कर्मी था, और आज के श्रमिक नेताओं की बातें सुनकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर का भय वे नहीं मानते हैं। मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, परंतु यह अवश्य चाहता हूं कि हम में नया जन्म प्राप्त जैसी सच्ची मसीहत हो इस क्षेत्र में। इससे निश्चय संबंधों में सुधार होगा। आप ऐसी भाषा सुन पाएंगे, यहोवा तुम्हारे संग रहे, और श्रमिकों की प्रतिक्रिया, यहोवा तुझे आशीष दे। वास्तव में बोआज के खेत में पूंजी और श्रम का कैसा अद्भुत मेल था। आइए हम रूत की पुस्तक 2:5 को पढ़ें। तब बोआज ने अपने उस सेवक से जो लवने वाले के ऊपर ठहराया गया था पूछा, वह किसकी कन्या है। अब हम कहानी के रोचक भाग पर आ गए हैं। यह परदेशी युवती रूत जो गरीबी समाज से बहिष्कार और अनंत विधवा होना स्वीकार करने को तैयार थी, अब खेत में सीला बीन रही थी। यह एक संयोग ही था कि वह बोआज के खेत में गई। बोआज बेतलहम नगर का सर्वाधिक स्वीकार योग्य कुंवारा था। मेरे विचार में बेतलहम की माताओं ने उसे अनेक बार चाय और खाने को निमंत्रण दिया होगा। कहा जाता है कि पुरुष का मन जीतना उसके पेट के मार्ग से है। मेरे विचार में अनेकों ने यह युक्ति अपनाई होगी, परंतु किसी न किसी कारण वह वहां की लड़कियों में रुचि नहीं रखता था। एक दिन उसने अपने खेत में यह मुआबी कन्या देखी और उसे चाहने लगा। उसे देखते ही बोआज को उससे प्रेम हो गया था। आप सोच रहे होंगे कि मैं पहली निगाह में प्यार को मानता हूं, मैं तो इसमें दृढ़ विश्वास रखता हूं। और वास्तव में यह तो बोआज के खेत में की प्रेम कथा है। आइए हम रूत की पुस्तक 2 अध्याय उसके 6 पद को पढ़ें। लिखा है, जो सेवक लौने वालों के ऊपर ठहराया गया था उसने उत्तर दिया, वह मुआबिन कन्या है जो नाओमी के संग मुआब देश से लौट आई है। लौने वालों का पर्यवेक्षक या देखभाल करने वाला बोआज को बताता है कि वह कौन है। उसके कहने का अभिप्राय है, तू निश्चय ही उसके विषय में क्यों ना जाने, वह सीला बीनने आई है और मेरे विचार में वह बोआज से क्षमा याचना करते हुए उसे विश्वास दिलाना चाहता है कि उसका रूत के खेत में आने से कोई भी स्वार्थ नहीं है। वह कहता है रूत की पुस्तक 2 अध्याय के 7 पद में, उसने कहा था, मुझे लौने वालों के पीछे पीछे फूलों के बीच बीनने और बाले बटोरने दे, तो वह आई और भोर से अब तक यही है, केवल थोड़ी देर तक घर में रही थी। मेरे मित्रों, पढ़ने से तो स्पष्ट समझ में आता है कि बोआज जो उस स्त्री से प्रेम करने लगा था, परंतु उसका पर्यवेक्षक अर्थात निरीक्षक तुरंत नहीं समझ पाया था, अतः वह उसके आने को अपनी गलती मानकर क्षमा याचना कर रहा था। वह मुआबिन कन्या है जो नौमी के संग मुआब देश से लौट आई है। उसने कहा, मुझे लौने वालों के पीछे पीछे फूलों के बीच बीनने और बाले बटोरने दे, मैं इनकार नहीं कर पाया क्योंकि मूसा की व्यवस्था उसे अनुमति देती है, वह गरीब है और परदेशी भी है। उसे क्षमा याचना की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बोआज को उस स्त्री से प्रेम हो गया था। इस वृतांत से रूत के विषय बहुत कुछ हमें जानकारी मिलती है। इससे प्रकट होता है कि वह निश्चय ही अपने नाम के अनुसार आचरण करती थी। रूत नाम का अर्थ है मोहनी या सुषमा। इसमें या इस दृश्य में निश्चय ही उसकी सुषमा प्रकट हो रही है। जो काम बैतलहम की समस्त सुंदरियां नहीं कर पाई, वह काम इसी युवती ने बिना प्रयास के कर दिखाया। उसने तो स्वयं को जाति बाहर मान लिया था और वह किसी का ध्यान आकर्षित करने की कोई कोशिश या आशा नहीं कर रही थी। आप उसके आश्चर्य को तो देख पाएंगे, बोआज के द्वारा उस पर ध्यान देने के परिणाम स्वरूप वह प्रकट करती है। उससे निरीक्षक से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के पश्चात बोआज की प्रतिक्रिया को देखिए। वह रूत के पास जाकर उससे बात करता है। रूत की पुस्तक 2 अध्याय उसके 8 पद में, तब बोआज ने रूत से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बीनने को ना जाना, मेरी ही दासियों के संग यहीं रहना। मेरे मित्रों, मैं निश्चय ही कहूंगा कि यह भाषा असामान्य है। यह व्यक्ति वास्तव में नहीं चाहता था कि गरीब उसके खेत में सीला बीने। मूसा की व्यवस्था में यह अनिवार्य नियम था और मेरे विचार में बोआज उदार हृदय मनुष्य था, परंतु उसने लिखकर नहीं लटकाया था कि आकर सीला बीनो, न ही उसने किसी को आमंत्रित किया था, परंतु यहाँ वह असामान्य रूप से रूत से निवेदन करता है कि वह अन्य किसी खेत में न जाए। मैं चाहता हूं कि तू मेरे ही खेत में सीला बीने। और वह यह भी कहता है रूत 2 अध्याय उसके 9 पद में, जिस खेत को वे लौती हो उस पर तेरा ध्यान बंधा रहे और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि तुझसे न बोले? और जब जब तुझे प्यास लगे तब तब तू बर्तनों के पास जाकर जवानों का भरा हुआ पानी पीना। मेरे मित्रों, यहाँ 2 बातें ध्यान देने योग्य हैं, अर्थात अति महत्वपूर्ण है। वह रूत को अपने खेत में सीला बीने का निमंत्रण ही नहीं देता है, वरन उस पर सुरक्षा का हाथ भी रखता है। उसने कहा, क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी है कि तुझे तंग न करे? सच तो यह है कि उस युग में रूत जैसी स्त्री के लिए चारों ओर खतरा था, क्योंकि वह एक तो विधवा थी और दूसरी वह मुआब से थी, और अति संभव था कि उसे बहुत अधिक अपमानित किया जाता। यही नहीं, उसकी आन भी सुरक्षित नहीं थी। बोआज यह जानता था, इसलिए उसने उस पर अपना सुरक्षा का हाथ रखा। उस युग में बैतलहम की सड़कें उतनी ही असुरक्षित थी जितनी आज की शहरी सड़कें हैं। परमेश्वर के एक भक्त ने कहा कि आज जंगलों में चलना आसान है, परंतु शहर की सड़कों पर चलना बहुत कठिन है, अर्थात असुरक्षित है। मित्रों, सभ्यता आज इस स्तर पर पहुंच गई है, विशेष करके अपराध के प्रति मुक्त विचार रखने वाली हमारी सभ्यता। उनका कहना है कि अभागे अपराधी को समाज में पुनः लाना है और उसे सुधारना है। क्या मैं कहूं कि मुख्य उद्देश्य तो उसे दंड देना है। इसी कारण अपराधी को बंदीगृह में रखा जाता है, उद्देश्य केवल उसे दंड देना है, अन्य कुछ नहीं। आज वे वास्तव में अपराधियों को कितना सुधार पाए हैं, क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि यह विचार केवल भ्रम है? परमेश्वर यह जानता है, क्योंकि वह मनुष्य को समझता है। वह आपको और मुझे भी जानता है। वह जानता है कि आप में और मुझ में पुराना स्वभाव है। जब हम मसीह के पास नहीं आएंगे तो हम में सुधार नहीं होगा। मेरे प्रियो, आज भी आपके लिए मौका है। अब बोआज के इस भद्र एवं उदार व्यवहार के प्रति रूत की प्रतिक्रिया को देखें। रूत 2 अध्याय उसके 10 पद में, तब वह भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशिन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है? मेरे मित्रों, जब मुझे एक पुस्तक के बारे में जानकारी मिली, रूत मुक्ति की प्रेम कथा, जिसमें लिखा हुआ था कि रूत का प्यार झूठा एवं दिखावा था। वह चतुराई दिखा रही थी। जब उसने बोआज से कहा, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशिन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है, परंतु अब मैं उस विचार को स्वीकार नहीं कर पाता हूँ। वह कदापि ऐसा नहीं है, वह झूठा नहीं था। नौमी के साथ बैतलहम आने से पूर्व उसे पूर्ण चेतावनी दी गई थी और उसकी स्थिति समझा दी गई थी। यही कारण था कि उर्पा बैतलहम नहीं आई थी। उर्पा आत्मत्याग करने के लिए तैयार नहीं थी। वह आजीवन विधवा रहना और कंगाल रहना उसे पसंद नहीं था। जाति बाहर होना वह नहीं चाहती थी, अतः वह मुआब में ही रह गई। परंतु रूत इन सब बातों को जानकर भी बैतलहम आई। बोआज के खेत आने पर उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उस पर कोई कभी ध्यान देगा। सत्य तो यह है मेरे मित्रों कि वह सोच रही थी कि वे उसे नीचा देखेंगे और अनदेखा करेंगे, क्योंकि उस युग में इसराइल मुआबियों से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखते थे। आगे चल करके हम देखेंगे कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार एक मुआबी को परमेश्वर की प्रजा में प्रवेश वर्जित था। मुआबियों का आरंभ बहुत बुरा था, जिसका वर्णन भी उचित नहीं है। इसी कारण उन्हें नीचा देखा जाता था। परंतु रूत की पुस्तक बड़ी रोचक बात प्रकट करती है। जाति संबंधित बाधाएं ढा दी गई हैं और परमेश्वर दंड के लिए नियत मनुष्यों की चिंता करता है, उनसे प्रेम करता है। मेरे मित्रों, यही आज आपकी और मेरी स्थिति है। रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। और पौलुस कहता है कि ऐसा प्रेम इस संसार में नहीं पाया जाता है। केवल परमेश्वर ही है जो मनुष्यों की सच्ची चिंता करता है। आप संसार में कहीं भी ऐसा प्रेम नहीं पाएंगे जैसा परमेश्वर पापियों को दिखाता है। और यही कारण है कि रूत ने कहा, मैंने तेरी दृष्टि में ऐसा अनुग्रह क्यों पाया। वह आश्चर्यचकित थी, वह परदेशी थी, जाति बाहर थी। मेरे मित्रों, मेरे विचार में उसका प्रश्न स्पष्ट एवं वास्तविक था। वह इस जातिवाद की दीवार का गिराया जाना समझ नहीं पा रही थी। उसने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ दिल का मामला है। अब मैं रूत के इस प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से दे सकता हूँ। यदि वह घर जाकर दर्पण देखेगी तो उसे कारण समझ में आ जाएगा। वह सुंदर थी, आकर्षक थी, उसमें एक स्त्री और एक पत्नी के सब सद्गुण थे, और यही कारण था कि बोआज को उससे प्रेम हो गया। मेरे मित्रों, उसके इस प्रश्न का तो उत्तर मैं दे सकता हूँ, परंतु एक और प्रश्न है जिसका उत्तर मैं नहीं दे सकता। मैंने परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह क्यों पाया? अब आप मुझसे यह नहीं कहना कि घर जाकर दर्पण में अपना चेहरा देखो। मैं देख चुका हूँ, यह सच है। मेरे प्रियो, छवि बहुत आकर्षक नहीं होती है। मुझे दर्पण में उत्तर नहीं मिलता है, परंतु परमेश्वर ने हम तक अनुग्रह पहुंचाया है। और ऐसे विचारक हैं जो रूत की पुस्तक का विषय इसी को मानते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह यहाँ इस स्त्री पर प्रकट अनुग्रह द्वारा प्रदर्शित किया गया है, और मैं यहाँ तक कहूंगा कि यह अनुग्रह का एक अति उत्तम उदाहरण है। आप और मैं परमेश्वर के समक्ष रूत का यह प्रश्न पूछ सकते हैं, मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह क्यों पाया? मित्रों, हम अपने आप में इसका उत्तर निहित नहीं देखेंगे। हम उसके लिए न तो आकर्षक हैं और न ही सुंदर और न ही सुरभ्य। हमें परमेश्वर को अच्छे लौने वाले या लगने वाले गुण नहीं हैं। उसके द्वारा मान्य और पुरस्कार पाने वाले गुण नहीं हैं। हम पापी हैं और परमेश्वर से विद्रोह किए हुए हैं। फिर भी इस सब दोषों के उपरांत भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। यह परमेश्वर के वचन के महान सत्यों में से एक है। उसने इस प्रेम का प्रदर्शन किया है, जब हम पापी ही थे मसीह हमारे लिए मर गया। उसने अपना अनुग्रह हमें प्रदान किया। मेरे मित्रों, वह आज हमारा उद्धार करता है, तो उसका यही आधार है। उसके पास हमारे उद्धार का अन्य कोई कारण नहीं है। हम रूत की पुस्तक 2:11 में पढ़ते हैं, बोअज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति मरने के पीछे अपनी सास से किया है और तू किस रीति अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको पहले तू न जानती थी, यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। मेरे मित्रों, जब रूत नौमी के साथ बैतलहम लौटी थी, तब बोअज की भेंट उससे नहीं हुई थी, क्योंकि वह संभवतः किसी अभियान पर गया हुआ था। उन अनेक अभियानों में से एक जो न्यायियों के युग में हुए, आपको स्मरण होगा कि बोअज का अर्थ केवल धनवान पुरुष ही नहीं, महान वकील और महान योद्धा भी है। निसंदेह वह एक सैनिक था। अतः वह उस समय नगर से बाहर था। जब वह लौट कर आया, तब उसने सुना कि नौमी के साथ एक विधवा बहू भी आई है। उसके विषय अच्छी बातें ही की जा रही है। बैतलहम भी अन्य स्थानों की नाई अफवाहों का स्थान था, अतः वहां रूत के बारे में चर्चा हो रही थी, परंतु केवल अच्छी बातें ही की जा रही थी। यह बड़ी असामान्य बात है। वे उसके बारे में आश्चर्यचकित थे। वे कहते थे, देखो, यह परदेशी बालिका अपनी सास के साथ आई है और कैसी विश्वास योग्य है। उसने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। वह किसी पुरुष के पीछे नहीं गई। वह बड़ी अच्छी लड़की है। बोअज को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी अत्यधिक प्रशंसा सुनने के बाद उसे देखा तो वह अनुपम सुंदरी निकली। अब जब वह उसे देखता है और पाता है कि वह उन सब गुणों की पुतली है, तो मैं आपसे कहता हूं कि यही कारण था कि उससे प्रेम हो गया। अब सुनिए उसके महान आत्मत्याग के विषय वह क्या कहता है। रूत की पुस्तक 2:12 लिखा हुआ है, यहोवा तेरी करनी का फल दे और इसराइल का परमेश्वर यहोवा, जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। मेरे मित्रों, उसने परमेश्वर को ग्रहण किया था। यही कारण था कि उसने मोआब देश छोड़ दिया और ऐसा अमूल निर्णय लिया। उसने स्पष्ट कहा था कि नौमी का परमेश्वर उसका परमेश्वर होगा। उसने मूर्ति पूजा त्याग कर जीवित एवं सच्चे परमेश्वर को अपनाया था। अब वह परमेश्वर के संतान में से एक थी। अतः इसराइल में यह एक महान गवाही थी। बोअज कहता है, यहोवा तेरे कार्य का फल दे और इसराइल का परमेश्वर यहोवा, जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। मेरे प्रियो, यदि बोअज को उससे कोई सरोकार है, तो वह उसके पूरे बदले की ओर कार्य करे। वह उससे प्रेम करता है और वह उसका छुड़ाने हारा भी ठहरेगा। उसे छुड़ाए जाने की आवश्यकता है। हम रूत की पुस्तक 2:13 में पढ़ते हैं, उसने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यद्यपि मैं तेरे दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूं, तो भी तूने अपने दासी के मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है। मेरे मित्रों, यहाँ रूत की प्रतिक्रिया बड़ी रोचक है। उसने सांत्वना की आशा कभी नहीं की थी, उनसे किसी से सद्भाव की आशा नहीं की थी, क्योंकि वह बोअज की दासियों में से नहीं थी। यही कारण था कि बोअज का ध्यान उस पर गया, क्योंकि वह अन्य युवतियों से भिन्न थी। आज का हमारा समाज व्यक्ति विशेष होने पर अपने विचारों की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करता है। कुछ समय पूर्व कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ वाद विवाद सत्र में इस बात को कहा गया, या उनके निवेदन पर आयोजित किया गया था। यह वह आयु होती है जब मनुष्य के मन में अद्भुत विचार आते हैं। वे विद्रोह करते हैं, क्योंकि उन्हें पुराने रीति रिवाज तोड़ना है। परमेश्वर ने हमें उद्देश्य के साथ में ऐसा ही बनाया है। मेरे मित्रों, हम इस विषय पर यहाँ विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे। वह युवागण अपनी व्यक्तिगत पहचान और अपने निर्णय तथा अन्यों से भिन्न होने के विषय में विवाद कर रहे थे। आप जानते हैं कि उनके साथ क्या था। वे सब एक जैसे दिखते थे। उनके बाल, कपड़े, विचार व्यक्त करना आदि सब एक सा ही था। मैं वहां उनको देख करके हंस रहा था। उन्हें मेरी हंसी पर आश्चर्य हुआ। यह बड़ी रोचक बात है कि वे एक पृथक व्यक्ति होना चाहते थे, अपनी पहचान अलग बनाना चाहते थे, परंतु भीड़ से अलग होना नहीं चाहते थे। रूत सर्वथा भिन्न थी। यही कारण था कि बोअज को उससे प्रेम हो गया था। हम भिन्न होना चाहते हैं, वस्त्र धारण द्वारा नहीं, हमें अन्य बातों में भिन्न होना है। यदि परमेश्वर की संतान है तो आप भिन्न ही होंगे। सोचने की, बात करने की और परमेश्वर की संतान के विचार में सबसे भिन्न होना है, उसे सोचना भी है। विश्वासी अल्पसंख्यक हैं। मेरे मित्रों, अब हम बोआज और रूत को एक बार फिर से देखें। बोआज ने रूत को खाने पर आमंत्रित किया। क्या आप सोच सकते हैं? हम उन्हें लगभग असभ्य ही समझते हैं। उस युग में आधुनिकीकरण तो नहीं था, परंतु वह उससे सुबह 10 बजे भेंट करता है और उसे दिन के खाने पर आमंत्रित करता है। वह उसके साथ दिन का भोजन करती है। और मेरे मित्रों, आप आज भी इसमें अधिक सुधार नहीं कर सकते हैं। क्या आप कर पाएंगे? शायद नहीं। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने तरीके से बोआज और रूत का मिलन कराता है, और हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर इनके विवाह का प्रबंध करता है। मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूँ कि आप सब इस अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आशीष प्राप्त कर रहे हैं। अगले अध्ययन में हम फिर मिलेंगे। तब तक आप परमेश्वर के वचन पर बने रहें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है,
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है।
यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है,
यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है।
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है,
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है।
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है,
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, मुझ।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है,
जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है,
दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है,
दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है,
सारी बीमारियां यीशु के अधीन है,
सारी बीमारियां यीशु के अधीन
है, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है,
आत्मिक शक्तियां।
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है,
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है।
कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है।
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है,
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है।
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है,
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे
यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है,
यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है।
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है,
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं।
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है,
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है।
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है,
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है,
कभी नहीं।